ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम् स्कंद छे अध्याय बारह श्लोक संख्या छब्बीस अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तात्पर्य इस श्लोक से यह प्रतीत होता है कि किसी समय उड़ने वाले पर्वत हुआ करते थे और उनके पक्ष इंद्र के वज्र द्वारा कट दिए गए। वृत्रासुर का विशाल शरीर एक पर्वत के समान था। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमको सूचित करते हैं कि पूर्व काल में किसी पर्वत जो आकाश में उड़ते थे और उनके पक्षों खटके इंद्र गिरा दिए थे पर्वतों। तो और दो मेरे अभी मन में और दो विषय है जिस पर मंतव्य करना चाहिए। एक है कि इस श्लोक में वृत्रासुर का नाम ऐसे रखा है असुर। एक्चुअली उनका नाम वृत्र था और हम ऐसे वृत्रासुर बोलते, जैसे इंद्र का नाम या इंद्र का पद है इंद्र और हम इंद्रदेव बोलते, इंद्रदेव वृत्रासुर। तो असुर वृत्र, तो किस प्रकार असुर थे वृत्रासुर? जन्म के अनुसार असुर थे और वृत्ति के अनुसार भी, क्योंकि इंद्र के साथ लड़ाई करना असुरों की वृत्ति है। भगवान कृष्ण एक बार स्वर्ग जाकर वो परिजात वृक्ष सत्यभामा के लिए उसको लेके आने के लिए इंद्र के साथ लड़ाई की। तो भगवान कृष्ण के अलावा और सब जो इंद्र के साथ लड़ाई करते सब असुर है। दो पक्ष है भौतिक जगत में, द्वो भूतो सारगे लोके इसमें दैव असुर एव च। विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुरस्तद् विपर्ययः। इस भौतिक संसार में दो प्रकार के व्यक्ति है, एक है देव और दूसरा है असुर। तो देव कौन है? विष्णु के भक्तों। और असुर कौन है? जिनकी भावना बिल्कुल विपरीत होती है, मतलब विष्णु के अभक्तों या दूसरे देव देवियों के भक्तों या असुरों के भक्तों। असुर कौन है? जो असुर के भक्त है। तो वृत्रासुर की वृत्ति ऐसी थी, तो उनका फायदा हुए, विशेषकर इंद्र से दुश्मनी करने के लिए, और वैसे किया है। परंतु उनकी आंतरिक भावना पूरी कृष्ण भक्ति में ही थी। बाली महाराज वैसे भी थे। तो बाली महाराज तो asuron ke raja te, aur isliye asuron jo karte hai to wo hi karte the, devon ko akraman kiya, aur asuron ke guru Shukra Acharya ka naam hai Shukra aur Shukra Acharya aise Indra Indra Dev, Vritra Vritra Asura. Shukra Shukra Acharya. So unse shakti milke. Surong, devon ka akraman ki. Kyunki wo to asurong aise karte hai. Aur daitya ke raja ka kartavya hai aise karna. Jaise is desh ka pradhan mantri ka sadaiva tatpar hona chahiye, is desh to Pakistan ka akraman aur dushmani se aise sadaiva savdani karna. Aur Pakistan ke pramukh ka prajaon ka raay mein uska mukhya kartavya hai Bharat ko dushmani ka. Wo pahila yogyata hai. To Bali Maharaj aur Vritra to dono kartavya shil hone se devon ki shatruta ki. Paranta dono ka vastav swabhav Vishnu bhakti maita. To Vritrasur aise asur bolte. Kyunki ve asur ke vansh mein janma liya hai. Aur asur ka kaam kiya hai. Parantu unka jivan ka udeshya tha Krishna bhakti karna. To aise asur, unko asur bolna, wo vyavaharik hai. To shastra mein ek chetavani hai. Ki Vaishnava jati buddhi. Jo vyakti soche ki ye ek Vaishnav wo shudra hai, wo brahman hai, wo American hai. Sharir ke anusar ya samajik sthiti ke anusar Vaishnavon ko parichay karna maha aparad hote hai. Aur uska phal hote hai naraki vaisaha. Arthat वो व्यक्ति जो इस प्रकार विचार करते हैं कि वो वैष्णव नहीं है, वो शूद्र है या वो ब्राह्मण है, वो विदेशी है, तो जो इस प्रकार भौतिक शरीर या भौतिक स्थिति के अनुसार वैष्णव का परिचय का विचार करना है, कहते हैं वो नारकी है. उसका मतलब वो नारक जाने के लिए योग्य है और अभी भी उसका दिमाग नारक वासियों जैसे है. तो फिर भी हम कभी कभी सामाजिक या व्यवहारिक कारण से ऐसा बोलते हैं कि वो एक भारतीय वैष्णव है, वो एक विदेशी वैष्णव है. जैसे यदि हम पूरी धाम यात्रा करेंगे तो कौन पूरी जगन्नाथ का मंदिर में प्रवेश कर सकते, तो वो भक्त प्रवेश कर सकते क्योंकि भारतीय है, और वो विदेशी है तो अंदर नहीं जा सकते. तो ऐसे व्यवहारिक कारण से हम भेद विचार कर सकते, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए. ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो ब्राह्मण वैष्णव है, इसलिए वो शूद्र वैष्णव से बड़ा है, ऐसा विचार करना अपराध होते। ये भारतीय वैष्णव है और इसलिए वो अभारतीय से उत्तम है, या ये अभारतीय है और वो भारतीय है तो अभारतीय उत्तम है, ऐसे ही सोचना अपराध होता। परंतु व्यवहारिक विचार से हम ऐसा बोल सकते और कि वृत्रासुर वृत्र तो असुर थे, बाह्य भौतिक दृष्टि से असुर थे, परंतु फिर भी वे महाभगवत वैष्णव थे, तो वो बड़ा विचित्र की बात है, चमत्कार। और इसलिए उनको असुर बोलने से ऐसे जोर देना है कि असुर होते हुए भी महान वैष्णव थे और दैत्य कुल में महाभगवतो महा प्रहलाद महाराज तो उत्तम उदाहरण है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं प्रहलाद वो क्या है, दैत्यानम प्रहलाद क्या है गीता में विभूति योग में, प्रहलाद दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, वो प्रहलाद मेरी विभूति है, अभी मुझे याद नहीं है अच्छी तरह। दैत्यानम छा प्रहलाद उसमें तो वो एक विषय है। दूसरा है कि वृत्रासुर का वर्णन है कि दोनों भुजाओं कट गए हैं और उनका शरीर से रक्त श्राव बहुत तेजी से उसका धार था, और सुखदेव गोस्वामी का मंतव्य है तो बहुत सुंदर देखता था, बहुत सुंदर है। तो हम क्या करेंगे, किसी का भुजाओं कट के हम सुंदर दर्शन करेंगे, वो सुंदर ऐसे या सुंदर देखते हैं, कैसे सुंदर है। किसी का हाथ काटने से हम भयभीत होते हैं, वो सुंदर नहीं देखते, तो क्यों ऐसे ही बोल गए सुंदर। तो दशम स्कंद में भी एक वर्णन है, तो केवल एक व्यक्ति के दो भुजाओं काटना नहीं, एक युद्ध में बहुत बहुत हजार हजारों सैनिक के हाथ पैर सिर तो सब कटे हुए हैं और रक्त एक महान नदी जैसे था। और वो वर्णन है कि जो वीर है तो ये सब देखने से अच्छा लगता है, और जो अवीर है जो कावर है, क्या बोलते हैं कावर, कायर है, तो वो सब देखने से डरते थे। तो क्षत्रियों का विचार में ये सब बहुत सुंदर देखते। तो क्षत्रिय की रीति है कि युद्ध युद्ध जाकर तो वापस आना नहीं है, यदि शरीर से खून नहीं निकलते, मतलब चोट होना चाहिए, और ये दाग जो शरीर में है वो क्षत्रियों का गौरव का लक्षण है। कि वो वास्तव वीर है। तो ये लड़ाई था इंद्र और वृत्र के बीच। तो रण प्रियजन अर्थात क्षत्रियों की दृष्टि में ऐसा देखना बहुत सुंदर ऐसा लग रहा था। और यही विषय है इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद का कि पूर्व काल में कुछ पर्वत थे जो जिसके दो पक्ष थे, जैसे पक्षी के दो पक्ष, और ऐसे आकाश में उड़ते थे। तो कौन विश्वास करेंगे? तो प्रभुपाद ऐसे लिखते, तो पूर्व काल में ऐसे था, तो कौन विश्वास करेंगे? तो प्रभुपाद विश्वास करते थे और मैं भी विश्वास करता हूं, आशा है आप सभी विश्वास करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार शास्त्र अनुवाद किए थे कि जो शास्त्र में है वो सही है, और ऐसे यथारूप शास्त्र का अनुवाद किए है। और बहुत लोग है जो तथाकथित पंडित है जो शास्त्र का वचन आधुनिक जड़वादियों का विचार के साथ समान बनना चाहते, और ऐसे ही बोलते हैं कि ये सब अलंकारिक भाषा है या रूपक है। तो प्रभुपाद तो ऐसे अनुवाद नहीं किया, तो ऐसे शास्त्र में वो वर्णन है, तो यही प्रमाण है कि पूर्व काल में ऐसे पक्षी पक्ष वाले पर्वतों थे जो आकाश में उड़ते थे, और इंद्रदेव क्योंकि वे सब पर्वतों से लोग के लिए बड़ा उपद्रव था, क्योंकि वो जब पर्वतों नीचे आ रहे थे तो बहुत से लोग तो मर गए थे, तो इसलिए वो इंद्रदेव जिससे ये सब उड़ते हुए पर्वतों से और उपद्रव नहीं हो तो उनका वज्र से ये सब पर्वतों के पक्षों को कट लिया है। बस, और ऐसा है शास्त्र में वर्णन है कि वो सब पर्वत कम से कम महान पर्वतों चिन्मय है, इसलिए दुर्गा देवी का एक नाम है पार्वती हिमावती, उनका पिताजी का नाम है हिमवत, हिमवत का मतलब पर्वत, और कालिंदी यमुना, कैसे नाम है कालिंदी? क्योंकि कालिंदा पर्वत की पुत्री है ऐसे, और सूर्यदेव की पुत्री भी है, गोवर्धन भी चिन्मय, ये सब वो वर्षाना नंदग्राम वो सब पर्वत, ये तीन पर्वत है मुख्य पर्वत है राजधाम में। तो गोवर्धन है विष्णु भगवान कृष्ण, और नंदग्राम में वो शिव है नंदीश, और वर्षाना है ब्रह्मा, ऐसे ब्रह्मा का रूप है। और श्रील प्रभुपाद संदिग्ध आधुनिक प्रत्यक्षवादियों को प्रमाण देते थे कि कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ पर्वत का शरीर और बड़ा होते हैं। तो मुझे मालूम नहीं, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, तो शास्त्र में वो वचन जो है हम Srila Prabhupada ka upadesh se hum yatarup grahan karte hain. To aise likhne se ki purv kal mein aise parvata. To is prakar hum is chote se tatparya mein kya adhyatmik upadesh kya hai isme. To sukshma roop mein ये आध्यात्मिक उपदेश है कि शास्त्र में यो सब वचन जो है यथारूप ग्रहण करना चाहिए. इसमें तर्क लाना नहीं. तो शास्त्र में वो वचन है कि पूर्व काल में तो उड़ते हुए पार्वतों थे, तो हम ऐसे स्वीकार करते बस. हरे कृष्ण. कुछ प्रश्न है? वैज्ञानिक दामोदर दास का कुछ आपत्ति है? नहीं, अभी तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक है क्या? सामान्य प्रत्यक्ष के साथ पंचम भगवत का पंचम स्कंद है वो महाकाश का वर्णन जो है, तो दोनों में मिल है. कुछ ऐसा है प्रत्यक्ष प्रमाण एक प्रकार का प्रमाण है, लेकिन ज्यादा अच्छा प्रमाण नहीं है. खाओ प्रत्यक्ष का कमजोरी हम प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है कि एक घटना हुई कितने 3 दिन के पहले, अभी अढ़ाई दिन के पहले, कुछ जो अनुचित था इस्कॉन बड़ौदा मंदिर के सामने कुछ हंगामा था ऐसे, और दोनों पक्ष के लोग के साक्षी थे, और दोनों तो स्वयं अपने आंखों से तो एक ही घटना देखते थे, लेकिन दोनों पक्ष का बिल्कुल विपरीत प्रमाण देते. तो इसका मतलब है हम जो हम देखते हैं और हम उसको भी इंटरप्रेट करते हैं, अपना विचार उसके ऊपर लगाते हैं, और जो हम देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं, हम हमारा पूर्व विचार के अनुसार हम देखते हैं. जैसे वो एक ग्लास है और उसमें इतना सा जल है, ये एक साधारण उदाहरण है, और एक आदमी बोलते है कि वो ग्लास आधा खाली है, और दूसरा आदमी बोलते है खाली भरा है. तो अलग दृष्टि से दोनों देखते, एक देखते है कि अभाव है, और दूसरा देखते है कुछ है वो अच्छा है, और दूसरा देखते है अभाव है वो अच्छा नहीं है. तो प्रत्यक्ष प्रमाण ज्यादा प्रमाणिक नहीं है. तो अगर प्रत्यक्ष प्रमाण से, वैज्ञानिक प्रमाण से हम भागवत का वर्णन समान कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम शास्त्र प्रमाण को विश्वास करेंगे. एक बार मैं बेंगलोर में था, पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठ वहाँ था, मतलब वो मध्व संप्रदाय का मुख्य विद्यालय है, और किसी कारण से वहाँ गया शास्त्र के बारे में कुछ पूछने के लिए. तो एक पंडित मुझको उत्तर देने के बाद मुझसे ही पूछे कि आप पाश्चात्य देशों में भगवत प्रचार करते हैं और पंचम स्कंद में वो महाकाश का वर्णन आप कैसे बोलते आधुनिक वैज्ञानिक जनों से, तो मैं ऐसे उत्तर दिया था कि उनका मेथोडोलॉजी है, क्या बोलते हैं मेथोडोलॉजी, पद्धति, उनकी पद्धति है हमारी पद्धति है, उनकी पद्धति है देखना और ऐसे क्या क्या वो मून कितना दूर है तो कुछ रेडियो वेव ऐसा लगाते हैं और कितना समय लगते हैं वापस आना तो ऐसे माप करते हैं, और हमारी पद्धति है शास्त्र के अनुसार वो सब कुछ जो है हम ग्रहण करते हैं बस। एक माता जी थी, अभी है एस्कॉन के है, तो वो एस्ट्रोफिजिक्स पीएचडी, तो एस्कॉन मैनचेस्टर, मैनचेस्टर एक शहर है इंग्लैंड में, तो दो तीन बार गए हैं और उसके बाद देवामृत स्वामी वहाँ जाने वाले थे, तो भक्तों देवामृत स्वामी को बताया कि आप साइंस आप जैसे साइंटिस्ट के बारे में कुछ मत कहिए क्योंकि ये एस्ट्रोफिजिक्स पीएचडी माता जी तो तीन चार बार आई है तो साइंटिस्ट के विरुद्ध जैसे मत कहो, तो उनका भाषण में वो देवामृत स्वामी बोले कि ये All these astronomers, astrophysicists, they don't know what they're talking about. Oh, well, Mataji, baad mein mujhko bataye ki, how does he know that we don't know what we're talking about? Wo kaise jante ki hum swayam jo hum kehte hai, hum nahi jante jo jis vishay par hum bolte. So she was very impressed. He's a layman, but he knows that we're cheating. Aur karib 10-12 saal ke pehle main ek patrika mein dekha ki astrophysics, astrophysicist samaj mein lagbhag 2000 matvad hai, to kaise jagat ki srishti hui. तो मैंने सोचा तो 2000 के अधिक एस्ट्रोफिजिस्ट नहीं है पूरा दुनिया में, तो सबका अलग अलग मत है, और वो माता जी को बोला और उन्होंने कहा कि और कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट है कि एक से अधिक मतवाद है, एक दो तीन चार थियोरी है, they don't know what they're talking about. हमारी स्थिति क्या है, अगर एक चींटी है यहाँ पर घूमते हैं तो चींटी का क्या ज्ञान है, वो नहीं जानते कि यही मंदिर है, मंदिर क्या है वो चींटी की बुद्धि में शक्यता नहीं है, समर्थन नहीं है ये समझना मंदिर क्या है, तो हम ऐसे ही है, हम एक छोटा सा लोक इस भूमि पर है और हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, इंद्रियों सीमित है, आयु सीमित है, और हम टेलीस्कोप से देखते और बोलते वो भी एक बात है कि हम सृष्टि के बहुत बाद है, तो कैसे सृष्टि हुई कैसे बोलना, तो हम कैसे बोल सकते हैं, यदि हम एक वृक्ष देखते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान से और वृक्ष का फायदा कैसे हुई थी कि एक छोटा सा बीज से आया था, तो कैसे हम ऐसा मतवाद बना सकते कि It's beyond hamari kalpana ke atit. O mosquito jo hai jo kya bolte hai, larva se aate hai. O wo anda se aate hai. It's beyond our imagination. So better hum shastra ka vichar grahan karenge. Achintya kalu ye bhava. Natangs tarkena yojayat prakriti bhyo parangyachcha tad achintya se lakshana. Jo achintya hai, iska matlab hamara khud ka chintan ke atit hote, uske bare mein tark karne se kuch bhi fayda nahi hoga. Kyunki achintya ka matlab hamara chintan ke atit hai. To isliye shastravani ko grahan karna chahiye. Ye hamari padhati hai. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai.